ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाया नमो नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीन तारणम्। तो आज नित्यम भागवत सेवया प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ शिला प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ श्रवण और कीर्तन दोनों करते हैं। पाठ का भी कीर्तन होता है, भागवत पाठ का गायन होता है और श्रवण भी होता है। तो आज स्कंद 5 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 12, तो ये श्लोक भी जैसे कि चला आ रहा है गद्य में है और इसको गाया नहीं जाएगा। तो शब्दार्थ पहले करते हैं, मेरे सब पीछे बोलिए। स वह बदात्मा यदा जब दुग्ध थकित या रिक्त पूर्व पहले का सुकृता अच्छे कर्म तदा उस समय कारस कर काकतुंड आदि कारस्कर काकतुंड आदि नामधारी अपुण्य द्रुम लता अपवित्र वृक्ष तथा लताएं विष उत्पानवत विषैले जल से युक्त कुएं के समान उभय अर्थ शून्य जो न तो इस जन्म में न अगले जन्म में सुख दे सकता है। रविडान संपत्तिवान जीवत मृतान जीवित होकर भी जो मृतक तुल्य है स्वयं वह स्वतः जीवत सजीव म्रियमाण मरा हुआ मृत उपधावती संसारिक लाभ के लिए निकट आता है। इस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। स यदा दुग्ध पूर्व सुकृत तदा कारस्कर काक तुंड्याद्य अपुण्य द्रुम लता विशोद पानावत उभयार्थ शून्य द्रविणान जीवन मृतान स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावती। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से या आगे चलें? आगे चलें। हाँ नहीं है श्लोक? श्लोक है ना, श्लोक थोड़ा उसको ऊपर कीजिए। अच्छा चलिए। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद के पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में नहीं अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मृत्युल्य मनुष्यों का, जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुओं के सदृश हैं। तात्पर्य, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका उपभोग विष वृक्ष के फलों का आस्वाद जैसा होता है। ऐसे कर्मों से बद जीव न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्म में किसी प्रकार लाभान्वित होता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है तो उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख लाभ होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह वर्जित सेव का आस्वादन करता है, जिससे वह स्वर्ग से वंचित रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दे। यत करोषि यत अश्नासि यत जोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो कुछ भी स्वाहा करते हो, जो कुछ हवन या दान करते हो, जो तपस्या करते हो, वह सब मेरे अर्पण कर। भगवद गीता 9.27। यदि व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो पूर्व पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त भौतिक संपत्ति तथा वैभव का सदुपयोग अपने इस जन्म तथा अगले जन्म को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है। उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे चाहिए कि वह इस अतिरिक्त धन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बदआत्मा, बद जीवात्मा यह संसार श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, यही इस जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलताम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जी गोपाल भट्टदास रघुना षट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांसी राधा कान नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम में आप सभी का वैष्णव जन भक्तजन माता येश सबका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। हम कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से और आज का जो श्लोक है हम प्रार्थना करते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ आपकी कृपा से कुछ बोलने में समर्थ हों, कुछ प्रपाद के तात्पर्य को समझने की हम शक्ति प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि यह श्लोक कहा गया है, स यदा दुग्ध पूर्व सुकृतस तदा कारस कारक तुंडया आदि अपुन्या द्रुमलता विशोद पानावत उभयो आर्थ शून्य द्रविणा द्रविणान जीवन मृतान स्वयं जीवन मिर्यमाण उपधावति। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में नहीं अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्यों का जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों लताओं और विषैले कुओं के सदृश हैं। तो श्रीधर गोस्वामी जी इस श्लोक के ऊपर टीका करते हुए लिखते हैं कि ये श्लोक जो है वास्तव में ये जो अध्याय है अध्याय 14 जिसको कहा गया है भौतिक संसार भोगों का एक विकट वन, ये पिछले अध्याय का इसमें तात्पर्य कमेंट्री बताई गई है। तो पिछले अध्याय का जो श्लोक है, 13वें अध्याय का जो 5वां नंबर श्लोक है, ये उसी का तात्पर्य है। तो 13वां अध्याय इसका हम आपको बताते हैं, जिसमें ये बताया गया है, अपुण्य वृक्षान श्रेयते शुद्धा अर्दितो मरीचितोयान अभिधावति क्वचित। इसमें ये बताया गया है कि ये जो वृक्ष है, अपुण्य वृक्षान श्रेयते शुद्धा अर्दितो, ये जो अपुण्य वृक्ष है, तो यहां अपुण्य वृक्ष की चर्चा की गई है। किसमें यह चर्चा हो रही है? राजा रहुगण तथा जड़ भरत के बीच में। तो अब इसी को खुलासा यहां पर कर रहे हैं इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी। इस पूरे अध्याय को विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? परीक्षित महाराज को। तो यह अपुण्य वृक्ष क्या होता है, ये विषैला वृक्ष क्या होता है, ये विषैला कुआं क्या होता है, तो इसकी चर्चा जो है यहां पर की गई है। तो यहां पर तात्पर्य ये है कि मनुष्य को अपने पवित्र कर्म के द्वारा पुण्य फल अर्जित होता है, और पुण्य फल वो प्राप्त करता है। पुण्य फल उसको जब प्राप्त होता है, चाहे उसी जीवन में चाहे अगले जीवन में, तो उसको भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पुण्य फल क्या होते हैं, उससे क्या मिलता है हमारे को? भौतिक सुविधाएं हम प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और किसी के जीवन में भौतिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती। तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे ऐसे ही कर्म थे तो हमको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। ये सोच करके हम अपने आप को धैर्य देते हैं। किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी को उलाहना नहीं दे सकते, क्योंकि साक्षात भागवतम कहती है कि आपके कर्मों के फल, अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं तो उसके फल से आपको भौतिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, और अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो उससे आपको दुख भरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ तात्पर्य में जो मुख्य बात है, जो यहाँ बताई जा रही है, कि जब व्यक्ति, ये आवश्यकता नहीं है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि पुण्य क्षीण होने पे मनुष्य उच्च लोकों से नीचे के लोकों में आता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आपने इसी जीवन में आपके पुण्य फल चल रहे हैं, आपको भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और अचानक से आपके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो गया और आपका जीवन देखते देखते बदल जाता है। आपने बहुत अच्छा सुख समृद्धि का जीवन आप जी रहे हो, लेकिन अचानक जब आपके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो गया इसी जीवन में आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति बहुत उच्च स्थिति पे है और कुछ ही सालों में उसका पतन हो जाता है, भौतिकता में पतन हो जाता है। ऐसे उदाहरण आप देख सकते हो इस भौतिक जगत में। एक मशहूर एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम आप लोगों ने सुना था, दो साल मुश्किल से हुए होंगे, बहुत नाम था, जानते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस। आज उसके मालिक का आता पता नहीं है, भागा हुआ फिर रहा है। क्या हुआ? पुण्य कर्म समाप्त हो गए, कहां गई एयरलाइंस। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण है, ज्यादा तो हम विस्तार से नहीं बोलेंगे किसी के बारे में। सहारा ग्रुप बहुत धन कमाया लेकिन अब सलाखों के पीछे। ऐसे अनेक उदाहरण आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये तो बड़े लोगों के उदाहरण हमने आपको दिए, लेकिन सामान्य जीवन में भी हम ये देखते हैं कि हमारी स्थिति निरंतर बदलती रहती है। आज जीवन का रंग कुछ है, कल जीवन का रंग कुछ होगा। तो ये जो हमारे को भौतिक हमारे को सुविधाएं प्राप्त होती है, भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त होती है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मफल भी हो सकते हैं और इस जन्म के कर्मफल भी हो सकते हैं। अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात कहने की है कि प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका उपभोग वृक्ष के फलों का आस्वाद जैसा है। ऐसे कर्मों से न तो बदजीव इस जन्म में न ही अगले जन्म में किसी प्रकार लाभान्वित हो सकता है। अगर हमारे पास भौतिक संपत्ति है, हमारे पास संपदा है, तो प्रभुपाद कहते हैं उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ मत करो, उसको खर्च मत करो। उसको अगर इंद्रिय तृप्ति में खर्च करोगे तो उसका परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। जब मनुष्य की ऐसी स्थिति हो जाती है, जब अच्छा खासा मनुष्य जिसके पास जीवन में सारी भौतिक सुविधा उपलब्ध है और एक दिन उसके पास कुछ नहीं रहता, तो वो ऐसे व्यक्तियों का आश्रय लेता है जो के यहाँ अनुवाद में बताया गया है, वह जीवित मृत्युल्य मनुष्यों के पास जाता है। यानी वो मनुष्य जीवित तो हैं लेकिन मृत्युल्य है। मृत्युल्य का मतलब ये है कि वो आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उनके पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उनके पास चले गए तो वो आपसे ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे कोई अपुण्यवान वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसमें कोई फल नहीं होता, या ऐसा कुआं जिसमें विषैला जल भरा हुआ है। तो प्रभुपाद भौतिकवादी व्यक्तियों के पास, जिनके पास धन संपत्ति के ढेर लगे हुए हैं, तुलना ऐसे ही वृक्षों से करते हैं जिसमें कोई फल नहीं लगता, या ऐसे कुएं से जिसमें विषैला जल भरा हुआ है। ऐसे लोगों के पास जाकर के क्या करोगे? उपहास का पात्र बन जाओगे, उपहास का पात्र बन जाओगे। तो जब हमारे या किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो उसको ऐसे व्यक्तियों का सहारा नहीं लेना चाहिए, या ऐसे व्यक्तियों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये समझ कर के मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। तो ये जो श्लोक है बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाला श्लोक है, और हमारे जीवन में इन घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में भागवत के और प्रभुपाद के तात्पर्यों को जब हम समझने लगेंगे तब हमको ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि प्रभुपाद ने भगवत गीता को शुरू करने से पहले आमुख में और आखिरी पैराग्राफ में जो शब्द लिखे हैं वो इतने दिल को छूने वाले हैं, वो इस तरीके से शब्दों को लिखा गया है जैसे कोई एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है। केवल भगवत गीता का एक पैराग्राफ अगर उसको हम समझने का और पढ़ने का प्रयास करें तो उससे हमारी आंखें खुल जाती हैं। प्रभुपाद ने भगवत गीता शुरू करने के पूर्व आमुख मैं लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं कि भौतिक प्रकृति या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों से बुरी तरह झगड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। अगर भौतिक प्रगति हमारी हो जाती है, हमारे पास भौतिक संपदा आ जाती है, तो प्रभुपाद क्लियर बता देते हैं कि आप उससे प्रगति से, भौतिक प्रगति से आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे इसकी संभावना नहीं है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने को सुखी बनाना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, लेकिन उससे कभी वह सुखी नहीं बन सकेगा। प्रभुपाद कहते हैं उससे कभी सुखी नहीं बन सकेगा। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। तो हमारी गलती कहां से शुरू होती है? प्रभुपाद ने तो प्रारंभ में ही घोषणा कर दी कि भौतिक सुविधाएं अगर आपको प्राप्त भी हो रही हैं, आपके पुण्य कर्म फल के अनुसार आपको भौतिक संपदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप इसको इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ मत करो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे आप क्या करोगे? आप सड़क पर आ जाओगे और किसी से मांगने जाओगे तो आपको कोई कहीं से भी कुछ मदद प्राप्त नहीं होगी। जैसे अपुण्यवान वृक्ष और विषैले कुएं से कुछ प्राप्त नहीं होता, तो संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। ये संसार ईर्ष्यालुओं का एक घर है। तो प्रभुपाद ने तो कहा कि भाई अगर आपके पास धन है तो उसको भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति चूंकि ईर्ष्या भाव रहता है, वो कहता है कि उसके पास धन नहीं है, मेरे पास धन है, आज मैं अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा, प्रदर्शित करूंगा। तो अगर हमारे पास किसी भी कारण से धन संपदा प्राप्त होती है तो हमें उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ईर्ष्यावश हम लोग प्रदर्शन करते हैं अपनी धन संपत्ति का, वो बहुत ही हानिकारक है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और उसको ठाकुर जी की सेवा में अगर हम खर्च करेंगे, भक्तों की सेवा में खर्च करेंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं उससे आपका जीवन, ये जन्म भी लाभान्वित होगा और अगला जन्म भी लाभान्वित होगा। मुख्य रूप से बात यह है कि इस बात को हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति, चाहे जीवन उसका भौतिकता में लीन हो चाहे आध्यात्मिकता में लीन हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। भौतिकतावादी व्यक्ति बाहर से सुख चाहता है। प्रभुपाद कहते हैं जो भौतिकता में लीन व्यक्ति है वो बाहर से सुख प्राप्त करना चाहता है, और अध्यात्मवादी व्यक्ति अंदर से सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख दोनों प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति हमेशा रहना चाहता है। कोई व्यक्ति मरना चाहता है क्या? कोई मरना चाहता है? नहीं, हमेशा रहना चाहते हैं। और हर व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ ज्ञान चाहता है। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति सामने खड़ा है तो वो चाहेगा कि ये क्या वार्तालाप कर रहे हैं मुझको मालूम पड़े, क्या बात हो रही है। तो हम सामान्य रूप से भी देखते हैं कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप को हम सुनना चाहते हैं, जिज्ञासा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण और अर्जुन का जब संवाद होता है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। वो संवाद की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, व्यक्ति जिज्ञासा करता है, व्यक्ति जानना चाहता है और हमेशा सुखी रहना चाहता है, हमेशा सुखी। ये नहीं कि सुबह सुखी रहूं रात को दुखी हो जाऊं, या घर के अंदर सुखी रहूं घर के बाहर दुखी हो जाऊं, नहीं। हर स्थिति में सुखी रहना चाहता है, हर व्यक्ति हर स्थिति में नित्य रहना चाहता है। तो ये गुण कहां से आ रहे हैं? तो ये गुण हमारे ही गुण हैं, आत्मा के गुण। सच्चित आनंद, सत मतलब हमेशा के लिए आपको रहना है। नित्यो नित्य नाम चेतनश चेतना नाम, नित्यो नित्य नाम चेतनश चेतना नाम, एको बहुनाम यो विधाताति कामान। तो भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। ममे वांछो जीव लोके जीव होता सनातन। तो इसमें कोई दोष नहीं है, भगवान नित्य हैं तो हमारे अंदर भी इच्छा है नित्य रहने की, मरने की इच्छा हमारी नहीं है। और एक भगवान सारे जीवात्माओं की कामनाओं की पूर्ति करता है, एको बहुनाम यो विधाति कामान। और चित जो है ज्ञान, वो भगवान से आ रहा है। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम भी सर्वज्ञ होना चाहते हैं, हमें भी सब ज्ञान चाहिए। और भगवान आनंद घन मूर्ति हैं तो हम भी आनंद में रहना चाहते हैं। तो भौतिकता में और आध्यात्मिकता में आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं, हम चूंकि शरीर नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी जो पहचान कर ली शरीर से कर ली है, इसलिए हमारी सारी दुखद कहानी शुरू हो जाती है। सारी दुखद कहानी हमारी शुरू यहीं से हो जाती है। इसको प्रतिदिन प्रतिपल हमारे को अपने आप को किस प्रकार से हम समझा पाए। एक श्लोक भगवद गीता का अगर समझ में आ जाए, बहुत लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं करता, अगर एक श्लोक 2.12 इस श्लोक को आप पढ़िएगा जाकर के, न त्व एवाहम जातु नासम न नेमे जनाधिपा, क्या न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था। भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे। अर्जुन को कह रहे हैं, या ये समस्त राजागण नहीं थे, और न भविष्य में कभी ऐसा समय होगा कि तुम नहीं होंगे या मैं नहीं होऊंगा। मतलब क्या कि हमेशा से तुम भी थे, हमेशा से मैं भी हूं, नित्यो नित्या नाम। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि मैं अपने आप को नित्य मानता नहीं, मैंने अपनी पहचान अपने शरीर से कर ली। ये सब दुखों की मूल जड़ है। अगर मेरे मन में यह विश्वास हो जाए कि मैं हमेशा से था, हमेशा से हूं, हमेशा से रहूंगा, फिर परेशानी क्या है? फिर किस बात की परेशानी है? परेशानी इसी बात की है कि मैं अपने आप को नित्य मानता नहीं, नित्य रहना चाहता हूं लेकिन नित्य मानता नहीं। ठीक है, एक श्लोक आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल देगा। और भौतिक हमारे को प्राप्त हो रहा है, हमारे को भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो रही है, और किसी को नहीं हो रही, लेकिन भौतिक सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं तो वो खतरनाक है। अगर उसको हमने इंद्रिय तृप्ति में लगाना शुरू कर दिया तो वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए बहुत भारी जंजाल बन जाएगा। इसलिए ये कला हमको सीखनी है कि अगर हमारे पास धन संपदा है तो हम उसको किस प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति में न लगाएं। नहीं तो राजा रहुगण को क्या आवश्यकता थी कपिल मुनि आश्रम में जाने की? राजा था, सब कुछ था, क्यों पालकी में बैठ करके कपिल मुनि आश्रम जा रहा है? क्या कारण है? बड़े बड़े राजा महाराजा पहले राज ऋषि कहलाए जाते थे, राजा होते थे, उनके पास सब कुछ होता था, लेकिन वो कैसा जीवन जीते थे? ऋषियों की तरह जीवन जीते थे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेत साम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधोना विधीयते। धन और संपत्ति होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें अगर मन चला गया, मन अगर उसमें आसक्त हो गया, नाव अगर जल में चल रही है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर जल के भीतर नाव, जल जो है नाव के भीतर आ गया तो फिर नैया डूब जाएगी, फिर नैया डूब जाएगी। तो अगर हम किसी को कह दें कि आपके पास धन संपत्ति है, आप जरा प्रभु जी इसको लगा दीजिए, आप लगा दो जरा धन, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, गुरु के निर्देशन में, तो हम जानते हैं कि हम कदाचित किसी व्यक्ति को ऐसा कह दें तो कोई ऐसा करने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो। भगवान धन नहीं मांगते, भगवान कहते हैं मन मेरे को दे दो, मन मेरे में लगाओ। इंद्रिय नाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर भगवान इंद्रियों में मन है और ये मन भौतिक सुविधाओं में धन संपत्ति में लगा हुआ है तो फिर विषय परेशानी का बन जाएगा। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं तो मन मेरे में लगाओ। अगर मन भगवान में लग गया तो फिर धन भी लग जाएगा, फिर धन भी लग जाएगा। अजामिल का मन किस में लगा था? शुद्राणी में। जब मन उसका शुद्राणी में लगा तो धन भी कहां लगा उसका? शुद्राणी में। सारा धन खींच के कहां लगाता था? उसी में लगाता था। गोखंड उपख्यान में धुंधकारी ले आया था, है ना, वैश्याओं को अपने घर में, तो धन भी उसका कहां लगता था? उसी में लगता था। तो वास्तव में जब मन हम भगवान में लगा लेंगे तो फिर धन हमारा कहीं और लगेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान में मन लगते ही वैराग उत्पन्न हो जाता है, फिर अपने ऊपर धन खर्च करने की इच्छा ही नहीं होती, फिर तो मन करता है कि किस तरीके से भगवान की इंद्रिय तृप्ति हो, भगवान के भक्तों की इंद्रिय तृप्ति हो। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अब अपनी प्रतिष्ठा भरे पदों को छोड़ा और आए और महाप्रभु से आकर के पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, आपने कृपा करी हमारे ऊपर उपकार किया, कृपा करी यदि मोरे करी आचा उद्धार, आपन कृपाते कह कर्तव्य आमार। आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया, सनातन गोस्वामी कर दी कहते हैं, लेकिन अब मेरा कर्तव्य क्या है आप कृपा करके मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना चाहिए। उनके पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन जब महाप्रभु की शरण ली तो उन्होंने मोहरों से भरी नाव को क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसका वितरण किया। के आमी के ने आमाए जारे तार तरप, ये तीन प्रकार के ताप मेरे को क्यों कष्ट दे रहे हैं, यह ना जानी आमी के मन हित आए, और मैं नहीं जानता कि मेरा हित किस चीज में है। रघुनाथ दास गोस्वामी 12 लाख सालाना आए छोड़ करके वृंदावन आए, तो अनेक दृष्टांत हैं कि ये जो धन संपदा है संसार में, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है और जिसके पास है वो भी दुखी है, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों का आश्रय ले लेते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, फिर हम इस भौतिक आपदा से, इस चक्रों से दूर हो जाते हैं। जैसे श्रीधर खोला बेचा महाप्रभु के एक बड़े सुंदर भक्त थे, तो महाप्रभु उनसे बड़ा स्नेह करते थे। उनके पास क्या था श्रीधर खोला बेचा के पास, तो अभी 5 मिनट में हम आपको थोड़ा उसका वृतांत बताएंगे थोड़ा। तो श्रीधर खोला बेचा एक ऐसे भक्त थे जिनके पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही प्रसन्न रहते थे। क्या कारण से प्रसन्न रहते थे, हम क्यों नहीं प्रसन्न रहते, वो क्यों प्रसन्न रहते थे, इस बात को जब हम थोड़ा इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो हमारे को समझ में आएगी। दीन रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान। दीन बंधु हैं श्री भगवान, न कुलीन बंधु न पंडित बंधु और न धनी बंधु। भगवान क्या है, दीन बंधु, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, कुलीन बंधु नहीं बताया, या पंडित बंधु बहुत अच्छा मेरे को ज्ञान है, पांडित्य मेरा बहुत अच्छा है, पंडित बंधु ना, या फिर धनी बंधु नहीं, दीन बंधु। महाप्रभु श्री गौरांग दूसरे चौथे रोज श्रीधर खेला बेचा के घर छात्रों के साथ आ टपकते थे। बहुत प्यारा लगता श्रीधर इन्हें, 2-4 बातें इसे प्रभु सुनाते और इससे सुनते, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन महाप्रभु उसके पास चले जाते थे और 2-4 केला के डंडे लेकर चल देते। श्रीधर बेचारा शांत प्रकृति का था, फिर भी इसे छेड़े बिना प्रभु को चैन नहीं आता था। महाप्रभु उसको छेड़ते जरूर थे, कैसे छेड़ते थे, एक दिन महाप्रभु श्रीधर के घर पर पधारे, श्रद्धा पूर्वक इसने उन्हें आसन दिया, आप बैठे और बोले, महाप्रभु कहते हैं, श्रीधर तू हर समय तो हरि हरि बोलता रहता है, लक्ष्मीपति भगवान का भजन करता है, फिर भी तू कंगाल कैसे है, खाने को पूरा अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, कारण क्या है इसका, महाप्रभु कह रहे हैं। श्रीधर ने कहा, पंडित मैं उपवासी नहीं रहता हूं, छोटा बड़ा वस्त्र भी मेरे शरीर पर है ही, नंगा नहीं रहता। ठाकुर जी ने मेरे को उपवासी नहीं बनाया, कुछ ना कुछ मेरे को दे ही देते हैं और कुछ ना कुछ मेरे तन पे वस्त्र रहता ही है। प्रभु ने कहा, श्रीधर देख, नगरवासी चंडी की पूजा करते हैं, सब मालामाल हैं, कोई भी तेरी तरह कंगाल नहीं है। श्रीधर बोला, आप ठीक कह रहे हो, किंतु काल तो सबका एक सा बीतता है, राजा महलों में रहता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाता पीता है और पक्षी वृक्षों पर ही रहकर रात बिता देते हैं, काल सबका समान बीतता है। श्रीधर खेला बेचा करता है, काल छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपने अपने कर्म का फल अब फल भोगते हैं। श्री प्रभु बोले, श्रीधर मैं समझ गया, तेरे घर में बहुत धन है, उसे मैं एक दिन सबके सामने प्रकाशित कर दूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं, तेरे पास बहुत धन है, तू इतना प्रसन्न रहता कैसे है, मेरे को तो यह समझ में नहीं है। श्रीधर ने कहा, पंडित चलो मेरे घर में देखो, आओ कौन सा धन मेरे पास रखा है, किंतु अब यहां से जाओ, बिना बात झगड़ा मत करो मुझसे। श्री महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ला अब मुझे क्या दे रहा है। श्रीधर ने कहा, केले के डंडे बेचकर तो पेट भरता हूं, आपको क्या दूं। प्रभु बोले, तुम्हारा जो दबा हुआ धन है उसे तो मैं फिर कभी देख लूंगा, मुझे केला डंडा केला दंड बिना मूल्य के दे दो। अब महाप्रभु उसे कह रहे हैं, मेरे को ये जो दंड है केले का, जो ये छिलके और ये दंड है, ये बिना मूल्य के दे दे, तेरे पास बहुत धन जमा है। श्रीधर ने कहा, विशंबर आज ही नहीं प्रतिदिन तुम मुझसे बिना पैसे ऐसा केले का दंड ले जाया करो, पर मुझे तंग मत किया करो, वैसे रोज ले जाया करो पर मुझे तंग मत किया करो। श्रीधर ने सोचा, ब्राह्मण को प्रतिदिन कुछ ना कुछ देने से मेरा क्या घटेगा, जो मेरा मुकद्दर है वह थोड़ी मेरा साथ ले जाएगा। अहो यही विशेषता है इस कली पावन अवतार श्री गौरांग की, श्री कृष्ण तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति प्रतम अश्नामी प्रतात्मना। कोई व्यक्ति पत्र पुष्प जल फल इत्यादि जो कुछ मुझे श्रद्धा से देता है, उस शुद्ध चित भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दी हुई वस्तु को मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन यहां भक्त श्रद्धा पूर्वक नहीं दे रहा, कैसे ले रहे हैं, उससे छीन के ले रहे हैं, महाप्रभु श्रद्धा से अर्पित नहीं कर रहा है। स्वयं उससे घर आकर महाप्रभु जबरदस्ती उसके फल मूल को मांग रहे हैं और आग्रह कर छीन रहे हैं, कैसी अद्भुत करुणा। एक दिन फिर श्री प्रभु श्रीधर से जा अटके, बोले, श्रीधर तू मुझे क्या समझता है, मैं कौन हूं। श्रीधर विशंबर, तुम ब्राह्मण होने से विष्णु के अंश हो। श्रीधर कहता है, तुम विष्णु के अंश हो, ब्राह्मण हो, विष्णु के अंश हो। श्री गौरांग, श्रीधर तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो ग्वाला हूं, गोप बालक हूं, तू मुझे ब्राह्मण बालक समझ रहा है। श्रीधर हंस पड़े प्रभु के वचन सुनकर, अपने प्रभु को उनकी माया श्रीधर न जान सके। श्री गौरांग ने कहा, सुन मैं तुम्हें अपना तत्व कहता हूं, गंगा मेरे चरण से निकली है जिससे उसकी इतनी महिमा है। महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीधर अरे निमाई पंडित, तुम्हें गंगा जी से भय नहीं लगता, ऐसे वचन कहते हो। ज्यों ज्यों मनुष्य बड़ा होता है, कुछ बुद्धिमान और कुछ स्थिर होता जाता है, किंतु तुम्हारी चंचलता तो दिन दूनी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार अनेक कौतुक करते हैं श्री गौर भगवान अपने कंगाल भक्त श्रीधर से। और एक दिन महाप्रकाश के समय श्री गौरांग ने वैष्णव को पुकार कर कहा, जाओ मेरे भक्त श्रीधर को घर से बुलाकर ले आओ। वह महासत्यवादी युधिष्ठिर की भांति मेरा प्रिय है, सारी रात वह मुझे हरि हरि कहकर उच्च ध्वनि से पुकारता है, आज मैं भी पुकारे बिना नहीं रह सकता, बुलाओ उसे, वह आकर यहाँ मेरे प्रकाश को देखे। अब महाप्रभु अपना महाप्रकाश उसको दिखाएंगे। भक्तगण श्रीधर को घर से बुलाकर प्रभु के पास लाए। महाप्रभु के दर्शन करते ही यह आनंद विहल होकर पृथ्वी पर गिर गए। भक्तों ने संभाला। प्रभु ने कहा, श्रीधर मैंने तुम्हारा अनेक अन्न बिना मूल्य के खाया है, तू महान तपस्वी है, तुझे कभी मेरी चंचलता पर क्रोध नहीं आया। श्रीधर आज मैं असिद्धियों को तुम्हारी दासी किए देता हूं। श्रीधर अद्भुत रूप के दर्शन कर बेसुध हो रहे थे। महाज्योतिर्मय विग्रह वंशीधारी दक्षिण में श्री बलराम विराजमान थे। ब्रह्मा शिव सनक नारद आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। प्रभु ने फिर सावधान किया श्रीधर को, बोले श्रीधर मेरी स्तुति कर। श्रीधर ने कहा, मैं महामूढ़मति हूं, आपकी स्तुति करना नहीं जानता। प्रभु ने कहा, श्रीधर जो वचन तू बोलेगा वही मेरी स्तुति है। ऐसा कहते ही प्रभु की आज्ञा से जगत माता सरस्वती श्रीधर की जिह्वा पर विराजमान हो गई। जय 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 महाप्रभु विश्वंभर, जय जय नवदीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय शुचि, जय जय शुचि पुण्यवती गर्वजान। इस प्रकार अनेक स्तुति करने लगे श्रीधर, और साक्षात श्री नंद नंदन रूप में देख श्री गौरांग की व्रज लीलाओं का गान करने लगे। श्री महाप्रभु ने प्रसन्न होकर अब इन्हें वर मांगने को कहा। कहा वर मांगो, तो श्रीधर बोलिए आमें किछु नहीं चाहिए, हे न कर प्रभु ये न तोर नाम गाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए मैं आपका केवल नाम गान करता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीधर की अनंत शुद्धि भक्ति देखकर प्रभु ने इन्हें प्रेम भक्ति योग प्रदान किया। समस्त वैष्णव ने हर्ष पूर्वक हरि ध्वनि करी। श्री गौरांग काजी का उद्धार कर जब कीर्तन करते हुए लौट रहे थे, जब काजी का उद्धार करके महाप्रभु लौट रहे थे, तो फिर श्रीधर की टूटी फूटी झोंपड़ी में घुस गए, चले गए, और एकमात्र टूटा फूटा लोहे का कटोरा जिसे चोर भी कभी ना उठा करके ले जाए, जिसमें कुछ पानी भरा था उठा लिया करुणा में ने और पीने लगे। वही पानी उसी कटोरे से किसकी मजाल है कि रोक सके महाप्रभु को। श्रीधर चीखने लगा, मर गया मैं मर गया, हाय हाय मेरे घर में मेरा संहार करने के लिए आए थे क्या आप। कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़ा श्रीधर। श्री गौरांग ने कहा, आज मेरा शरीर शुद्ध हुआ है श्रीधर, कृष्ण चरणों में आज मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, वैष्णव के घर का जलपान करने से कृष्ण भक्ति लाभ होती है। तो ये है वैष्णवों का भाग्य। तो इसी प्रकार से श्रीवास पंडित के घर में प्रतिदिन कीर्तन हुआ करता था, नित्य प्रति सुबह रात कीर्तन हुआ करता था। एक दिन महाप्रभु बोले, श्रीवास तुम कोई कार्य नहीं करते, तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी। मैं देखता हूं रात दिन तुम हरिनाम करते हो, कुछ कार्य नहीं करते, ऐसे कैसे तुम्हारी गृहस्थी चलेगी। तो श्रीवास ने क्या किया, 3 बार ताली बजाई। महाप्रभु ने कहा, इसका क्या अर्थ है, ये 3 बार ताली बजा रहे हो आप। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु पहले दिन अगर मुझको कुछ नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी अगर कुछ नहीं मिलेगा खाने को कोई बात नहीं, अगर तीसरे दिन भी मेरे को नहीं मिला तो मैं अपने गर्दन में पत्थर बांध के गंगा जी में कूद जाऊंगा। महाप्रभु ने कहा, क्यों ऐसा क्यों। श्रीवास बोला, इसलिए कि मैं भगवान की वाणी को गलत साबित नहीं होते देख सकता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभिक्तनां योगक्षेमं वहामि हम। कि भगवान ने जो वचन दिया है कि जो मेरी भक्ति में लगा रहता है योगक्षेमं, जो उसकी आवश्यकताओं को मैं पूरी करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, इस वाणी को कहीं गलत न कोई कह दे, उंगली न उठा दे, इसलिए मैं तीसरे दिन गले में पत्थर बांध के गंगा जी में कूद जाऊंगा, कोई बात नहीं है। महाप्रभु ने कहा श्रीवास कदाचित लक्ष्मी जी को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है वो घर घर कटोरा मांग करके भीख मांगे, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम जीवन में कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखोगे, कभी जीवन में दरिद्रता का मुंह नहीं देखोगे। और तुम तो क्या, तुम्हारे घर के कुत्ते पिल्ले छिपकली ये भी पुण्यवान और भाग्यवान होंगे। तो केवल और केवल क्या आवश्यकता है, भगवान के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित करना है जिस भी तरीके से भगवान हमारे को रखे। और जो कुछ भी हमको प्राप्त है प्राप्त नहीं है हमारे को क्या है, हमारे को स्वयं को ही भगवान को समर्पित कर देंगे, अपना मन भगवान को दे देंगे, तो फिर इंद्रिय भोगों में फंसने की आवश्यकता नहीं, किसी अपुण्यवान वृक्ष के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी विषैले कुएं के पास जाने की आवश्यकता नहीं। केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की शिला प्रभुपाद की जय। दई गौर प्रेमानंदी।